ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि यहाँ पर पुरंजन उपाख्यान की कथा चल रही है, इस पुरंजन उपाख्यान में आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी हैं कि अब पुरंजन भोग भोगते भोगते वृद्ध हो चुका है, अब उसको काल कन्या ने ग्रस लिया, यही इस समय चल रहा है। इस 28वें अध्याय में और इस अध्याय का नाम प्रभुपाद ने दिया है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। और आज का श्लोक है तृतीय है जिसको हम लोग इस पर विचार करेंगे। तो श्लोक मेरे पीछे दोहराएंगे। काल कन्या अपि बुभुजे पुरंजनपुरम बलात् यया अभिभूतः पुरुषः सद्यः निःसारताम् इयात्। कालकन्या पिबुभुजे कालकन्या पिबुभुजे पुरंजनपुरम बलात् पुरंजनपुरम बलात् यया विभूतः पुरुषः यया विभूतः पुरुषः सद्यो निःसारताम् यात् सद्यो निःसारताम् यात्। काल कन्या काल की पुत्री ने अपि भी बुभुजे अधिकार कर लिया पुरंजनपुरम पुरंजन की नगरी पर बलात् बलपूर्वक यया जिसके द्वारा अभिभूतः चंगुल में फंसकर पुरुषः मनुष्य सद्यः तुरंत निसारताम निकम्मापन इयात प्राप्त करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। तात्पर्य जीवन के अंत समय जब मनुष्य पर बुढ़ापे का आक्रमण होता है तो उसका शरीर किसी काम के लायक नहीं रह जाता, इसीलिए वैदिक शिक्षा कहती है कि मनुष्य बचपन में ब्रह्मचर्य का अभ्यास करे, अर्थात वह पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा रहे और स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क न रखे। जब बालक खड़ा होता है और 20-25 वर्ष का होता है तो उसका विवाह होता है। समय से विवाह होने पर तुरंत ही उसके स्वस्थ तथा हृष्ट पुष्ट बच्चे उत्पन्न होते हैं। इस समय लड़कियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि तरुण लोग संभोग के मामले में निर्बल हैं। लड़का पुत्र तभी उत्पन्न हो सकता है जब पुरुष का वीर स्त्री से प्रबल हो, और यदि स्त्री प्रबल हुई तो लड़की उत्पन्न होती है। अतः यदि कोई विवाह के बाद पुत्र की उत्पत्ति चाहता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। उस समय तक पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे परिवार का सारा उत्तरदायित्व उसे सौंपा जा सके। तब पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताने के लिए दूर दूर तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। जब पति पत्नी घर तथा परिवार से विरक्त हो जाते हैं तो पत्नी अपनी प्रौढ़ संतानों के संरक्षण में रहने के लिए घर वापस लौट आती है और गृहस्थी के कार्यों से अलग रहती है। तब पति भगवान की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से संन्यास ले लेता है। यह सभ्यता की पूर्ण पद्धति है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए है। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से कृष्ण भक्ति नहीं करता तो जीवन के अंत में उसे स्वीकार कराने का अभ्यास कराना चाहिए। दुर्भाग्यवश ना तो बचपन में ऐसी शिक्षा का कोई प्रबंध है और ना अंतिम काल में ही कोई अपना परिवार छोड़ पाता है। ऐसी स्थिति है पुरंजन की नगरी इस देह की। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले। भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कालकन्या पिबुभुजे पुरंजनपुरम बलात् यया विभूतः पुरुषः सद्यो निसारताम यात्। धीरे 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 कालकन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन की नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें सभी प्रकार से निकम्मा बना दिया। तो जैसा कि आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि पुरंजन अब जर्जर हो चुका है, क्योंकि उसको काल की कन्या मतलब जरा वृद्धावस्था ने उसको पकड़ लिया है। जब काल कन्या का प्रवेश होता है इस देह में जरा का, तो उनके साथ उसके समस्त सैनिक भी आ जाते हैं, रोग इत्यादि। तो पुरंजन की अवस्था भी इसी प्रकार से हो गई है, इसीलिए अब वो कुछ करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। विषयों को जितने आनंद से भोगता था, अब वो विषय भी इसको विष के समान प्रतीत होने लगे हैं। तो प्रभुपाद ने इसमें बहुत सारी बातें बतलाई हैं, जिनमें से जो अंतिम लाइन लिखी हैं चार, ये ही हमारे समझने योग्य हैं कि यह जो मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए है, इसको अन्य अन्य विषयों में, विषय तो छोड़िए, अन्य मार्गों में भी नहीं ले जाना चाहिए। ज्ञान कर्म आदि केवल और केवल भक्ति से इसका साक्षात्कार करना चाहिए भगवान का, ताकि हमको परम पद भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। तो इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर नारद जी ने इस पुरंजन उपाख्यान को प्रारंभ किया और यहाँ तक पहुँच गए कि मनुष्य को वृद्धावस्था किस प्रकार घेरती है, ये पुरंजन के उदाहरण से समझा रहे हैं। पहले इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो जरा है, बुढ़ापा, ये सभी व्यक्तियों के लिए संकेत है। क्या संकेत है? कि अब भजन करना चाहिए। कहते हैं अबलो नसानी अबना न सही हो, कि अब तक तो नशे में रहा मैं विषयों के, अब नशा करने का समय गया। तो यह जो भगवान ने वृद्ध अवस्था बनाया है, नहीं तो देवताओं के समान हमारा भी शरीर सुगंधित रहता, दिव्य भोगों को प्राप्त करने के लिए सदा युक्त रहता, उपयुक्त रहता। लेकिन ये जरा बना करके एक बहुत बड़ा संकेत है। इस जरा को देख करके व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो बहुत बुद्धिमान, जिन्होंने सत्संग प्राप्त किया है, केवल वही विवेकी मनुष्य ही इस जरा को समझ पाते हैं और इस जरा अवस्था का सदुपयोग कर पाते हैं। अन्य व्यक्ति केवल तृष्णाओं के पीछे इस जरा को और जवान बनाने में, यंग बनाने में, युवक बनाने में लगे रहते हैं। तो जरा के लिए बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी बातें हैं शास्त्रों में कि जरा राक्षसी के तुल्य है, जरा देवताओं के तुल्य है, जरा बालक के तुल्य है, जरा एक तृष्णा की सौत के समान है। बहुत सारी विविध प्रकार की वार्ताएं हैं जिसको हमको समझना चाहिए, शायद समझ में थोड़ी सी बात आ जाए। तो जरा शास्त्रों के समझाने का कोई विषय नहीं है, ये सब के अनुभव का विषय है। प्रतिक्षण प्रतिपल व्यक्ति वृद्ध व्यक्तियों को देख रहा है, वृद्ध स्त्री पुरुषों जानवरों सभी वृद्ध होते हैं, सभी जर्जर होते हैं शरीर से, कि जरा अवस्था आते ही कैसे हाथ पैर कांपने लगते हैं, कैसे सिर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कैसे दांत सब टूट के गिर जाते हैं, कैसे मुंह में लार गंदगी ही भरी रहती है, खखार कफ आदि से संपूर्ण मुख उसका मलिन रहता है, सदा उसका स्थान टॉयलेट में ही बना रहता है, कुछ पचा नहीं सकता है। तो हाथ पैर, ये तो सभी के अनुभूत चीज़ें हैं, फिर भी शास्त्रों में इसको, इस जरा को बड़े ही उत्तम प्रकार से विद्वानों कवियों ने निरूपण किया है कि ये जरा जब मनुष्य को घेर लेती है तो सबसे पहले आक्रमण कहाँ करती है। कहते हैं कि ये जो जरा है मनुष्य को पूर्णतया असक्त बना देती है, कुछ भी भोगने के योग्य नहीं छोड़ती, कुछ भी किसी प्रकार से, केवल तृष्णा उसमें रह जाती है। जरा की समाप्ति पर भी कहते हैं तृष्णा तो तरुणायते, जरा समाप्त भी हो जाएगी, लेकिन जो तृष्णा है अंदर की भोगने की इच्छा, वो समाप्त नहीं होती है किसी भी व्यक्ति की। कितना भी बूढ़ा हो जाए, शरीर वृद्ध हुआ, मन तो वृद्ध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समस्त जो गंदगी है वो तो मन के अंदर भरी हुई है। ये इंद्रियों में सामर्थ्य समाप्त हो गया है, लेकिन अंदर से तो संपूर्ण पावर है उसके पास। तो कहते हैं कि ये जो जरा है ये क्या करती है, कहती है जैसे मदिरा पीने वाले व्यक्ति जब मदिरा पी लेता है तो उसकी आँखों को भ्रमित कर देती है, लड़खड़ाने लगते हैं उसके हाथ पैर, उसकी वाणी को अस्फुट कर देती है, स्पष्ट उच्चारण नहीं करने देती, लोगों में निंदा का पात्र बनाती है, कहीं पर भी अपनी गति को प्राप्त नहीं कर पाता। उसी प्रकार से मदिरा पीने वाले व्यक्ति के समान जिसको इस जरा ने ग्रस्त कर लिया है, कालकन्या ने ग्रस्त कर लिया है, उसकी अवस्था है नेत्रों की ज्योति मंद पड़ जाती है, कुछ का कुछ देखता है, अपने परिजनों को भी नहीं पहचान पाता है। अधिक दवा खा लिया, अधिक MG की दवा खाया तो आँख भी चली गई, हाथ पैर लड़खड़ाते हैं, सदैव हाथ में डंडा रहा आता है, कुछ भी देखने का सामर्थ्य रहता ही नहीं है, और निंदा का पात्र भी बन जाता है। घर में लोग सोचते हैं कब ये मर जाए तो वह एक बला टूटे छूटे। कौन वृद्ध व्यक्ति से प्रेम करना चाहेगा, क्योंकि उसकी अनंत समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं वृद्ध जरा के साथ साथ, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, कौन उसको दिन भर नहलाते बैठेगा, कौन दवा खिलाएगा, अन्य अन्य भी तो घर के कार्य हैं। तो वृद्ध अवस्था ऐसी दुखदायी अवस्था है जो सभी के साथ होती है, जो भी जर्जर अवस्था में आता है। तो कहते हैं निंदा का पात्र भी बनाती है, क्योंकि दिन भर व्यक्ति जब रोगी खांसता रहता है, खखार गंदगी फेंकता है, मलमूत्र ही त्यागता रहता है, कुछ पच नहीं पाता है, घर में पड़ा पड़ा कुछ ना कुछ किसी को बुलाता रहता है, उसको लगता है कोई मेरे पास आए तो कौन आएगा, कोई नहीं आएगा, किसको इतना समय है, सभी लोग अपने जवानी के धन कमाने में अन्य अन्य कार्यों में व्यस्त है। तो इसीलिए शरीर में दुर्गंधी पैदा, जैसे एक दारू पीने वाले मदिरा पान करने वाले व्यक्ति के शरीर में सुगंध भी दुर्गंधित हो जाती है, उसके शरीर दुर्गंधित हो जाता है, ऐसे ही वृद्ध व्यक्ति जब अपनी एक ही खाट में कब तक लोग उसके कपड़ों को धोते रहेंगे, कब तक नहलाते रहेंगे, दिन भर गंदगी करता है, तो इसलिए वो भी दुर्गंधित हो जाता है। जैसे राक्षसी पृथ्वी से यदि कुपित हो जाए, पृथ्वी के लोगों से कुपित हो जाए, तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के सिर पर सबसे पहले प्रहार करती है, और उसके बाद द्विजों पर प्रहार करती है, ब्राह्मणों पर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों पर, उसके बाद उनके शरीर का समस्त रक्त पान कर लेती है, शरीर को बिल्कुल खखड़ा बना देती है, अकड़ा सा के मांस को खा जाती है और दुर्बल दुर्बल सा बना देती है। इसी प्रकार से जो जरा है राक्षसी के समान सबसे पहले सिर पर आक्रमण करती है, मतलब सिर के बालों को सफ़ेद कर देती है या बालों को निकलवा देती है। द्विजों को जैसे राक्षसी ब्राह्मणों को नष्ट करती है, उनको पीटती मारती है, उसी प्रकार से वृद्ध अवस्था जब आती है तो सबसे पहले द्विज माने दंत, क्योंकि दो बार इनका जन्म होता है, जैसे ब्राह्मण का दो बार जन्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, उसी प्रकार से एक तो जन्म माँ के गर्भ से, दूसरा जनेऊ संस्कार से, उसी प्रकार से दांत भी दो दांत, वैसे लोगों में भी होता है, कहते हैं ना खाने के दांत अलग है और तो इसी प्रकार से वो द्विजों को माने दंतों को ये जरा अवस्था जो राक्षसी के समान है वो इसको सबसे पहले तोड़ डालती है, कुछ खाने के लायक नहीं छोड़ती है। मन तो करता है कि बढ़िया बढ़िया चीज़ चबा चबा करके खाएं, लेकिन क्या करें, अब गुटकना पड़ रहा है, दांत ने समाप्त, नकली दांत भी लगाते हैं लेकिन क्या करें, बार बार निकाल निकाल के धोना पड़ता है, रखना पड़ता है धोखे से किसी के सामने ना दिख जाए, नहीं तो और कुरूप लगता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से और जरा अवस्था मनुष्य के रक्त का पान कर जाती है, सुखा डालती है, हड्डी हड्डी केवल बचती हैं, शरीर की झुर्रियाँ, शरीर के जो चर्म है ऊपरी का, जिसकी सुंदरता के कारण से व्यक्ति अभिमान करता है, अनुमान भी नहीं लगा सकता है एक युवक, एक यंग व्यक्ति कि मेरी भी अवस्था ऐसी इस वृद्ध महिला इस वृद्ध पुरुष के समान होगी, कोई भी अनुमान नहीं करता है इस विषय का, कोई अनुमान कर ही नहीं सकता है, सोचता ही नहीं है कि मेरी भी अवस्था ऐसी होगी। यदि ऐसी अवस्था का वो चिंतन कर ले तो सावधान हो जाएगा, लेकिन वो चिंतन पथ में उसके आती ही नहीं है ये वार्ता। तो इसीलिए झुर्रियाँ झूल शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, काला सा चेहरा हो जाता है और भी बिल्कुल लटक जाता है, किसी काम का नहीं छोड़ती है ये जरा। कहते हैं कि जब ये जरा में आती है तो केश को ये सफ़ेद कर देती है, तो केश को सफ़ेद कर देती है तो ऐसा लगता है जैसे मानो ये केश कह रहे हो कि अब जरा आ गई है, अतृष्णा तू चली जा। लेकिन जरा आने के बाद भी वो जरा आ गई लेकिन तृष्णा नहीं जाती है कभी भी, ये केश बता रहे हैं। फिर भी आकर के तृष्णा तो पहले से है, जरा भी आक्रमण कर दिया, अब जरा कैसे रह सकती है जब तक उसकी सौतर उसके साथ रहेगी तृष्णा, तो वो चाहती है कि तृष्णा चली जाए। तो इसलिए वृद्धावस्था जो जरा आकर के संकेत देती है कि अब तृष्णा को चले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं जाती है। कहते हैं कि जो जरा अवस्था है ये मनुष्य को जीते जी देवतुल्य बना देती है। उपमा किया है कवियों ने कि जो जरा अवस्था है कहते हैं देवताओं के समान बना देती है। कहते हैं कि जैसे जो विमद है मतलब घमंड, जो व्यक्ति का ज्ञान है वो ऋषियों को विमत कर देता है, घमंड रहित कर देता है। और कहते हैं कि विमत उसी प्रकार से मतलब घमंड रहित मतलब अब वो किसी काम का ऋषि अब कोई भी विषयों को भोगने नहीं जाता है। इसी प्रकार से जरा जब आ जाती है तो व्यक्तियों का जो वीर है वो क्षीण हो जाता है पूर्व वृद्धावस्था में, तो अब इंद्रिय विषय भोगने के लायक नहीं रहता है। कहते हैं कि जो गद है जैसे भगवान हाथ से गदा लिए रहते हैं उसी प्रकार से ये जो रोग गदा के समान आ जाते हैं शरीर में वृद्धावस्था के आने पर। जैसे भगवान की शोभा गदा से होती है, इसे जरा अवस्था की शोभा भी गद मतलब रोगों से। इसी प्रकार से कई तरह की तुलना किया है कि कुरूप कर जाती है, जैसे शिव जी के नेत्रों में तीन नेत्र होने से उनका अविषम चेहरा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार वृद्ध अवस्था के आने पर नेत्रों की मंद ज्योति हो जाती है और उसका चेहरा भी कुरूप सा हो जाता है। कैसे है? जैसे यमराज दंड देने के लिए दंड धारण करते हैं, इसी प्रकार वृद्ध भी अपनी गति को चलायमान रखने के लिए दंड धारण करता है, लेकिन इससे वो सुखी नहीं हो पाता। शंकराचार्य जी तो कहते हैं चरपट पंजरिका स्तोत्र में कि गलितम पिंडम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कहते हैं कि व्यक्ति के केश सफेद हो जाते हैं, शरीर पिंड जो है गल जाता है, जर्जर हो जाता है। दसन विहीनम जातम तुंडम, दसन माने दांत, दांतों से विहीन ये मुख हो जाता है, फिर भी कहते हैं अवृद्ध वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्ध दंड धारण करके यहाँ से वहाँ चलता है, फिर भी कहते हैं आशा पाचम, आशा की जो पास है आशा की जो रस्सी उसको कभी नहीं उससे मुक्त हो पाता। मतलब इतनी आशाएँ रहती हैं वृद्धावस्था में भी कि अभी कुछ कर लूँगा, अभी इतना व्यापार करना बाकी है, अभी इतने लोगों से मिलना बाकी है, तरह तरह की अनंत कामनाएं हैं, उसको लगता ही नहीं कि मैं मर जाऊँगा। तो आशाओं को नहीं छोड़ता वृद्ध अवस्था आने पर भी, क्योंकि आशा तो तभी छूटेगी जब सत्संग होगा, तभी छूट सकती है। और ये वृद्ध अवस्था व्यक्ति को एक बालक बना देती है, बालक जैसे एक छोटा सा बालक उसके कोमल कोमल केस होते हैं, ऐसे ही बाल वृद्ध व्यक्ति के बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे एक बालक के मुख में दांत नहीं होते हैं, ऐसे एक वृद्ध के भी दांत नहीं होते हैं। जैसे बालकों की बुद्धि रहती है ऐसी बालक बुद्धि वृद्ध हो जाते हैं। सब नहीं, जो सत्संगी है जिन्होंने संतों का संग किया है उनकी बुद्धि बालक के समान नहीं होती है, जो सामान्य वृद्ध है उनकी वार्ता है लार, जैसे बालक दिन भर निकालता रहता है इसे वृद्ध व्यक्ति के मुख से लार ही लार रहती है, क्योंकि दांत रहने से कई बार लार को रुक जाती है। अब वो रोकने के लिए जो था अब वो टूट चुका है, तो इसलिए अब लार निरंतर निकलती रहती है बाहर। तो बालक जैसे लड़खड़ा लड़खड़ा करके चलता है, ऐसी वृद्ध भी लड़खड़ा करके दीवार पकड़ पकड़ करके कैसे तैसे चलता है, चलने का प्रयास करता है। तो इस तरह से तरह तरह के प्रयास बालक के समान उस वृद्ध व्यक्ति के होते हैं। और भी वृद्धों के की बहुत सारी बातें हैं जो अनुभव करने योग्य हैं, जिससे व्यक्ति वृद्ध अवस्था के कष्टों को अनुभव करे और तत्व ज्ञान की ओर आगे बढ़े। इसीलिए भगवान ने इसको दुख रूप बोला है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, अनुदर्शन जन्म में जो कष्ट है, कहते हैं नरक से 100 गुना अधिक माँ के गर्भ में कष्ट होता है। मृत्यु के कष्ट भी आप लोगों को ज्ञात हैं, इसीलिए यदि हमको मृत्यु का कष्ट ज्ञात नहीं होता तो हम मृत्यु से भयभीत नहीं होते। सभी प्राणियों को मृत्यु से भय है, कोई मरना नहीं चाहता, कोई भी चाहे जितना वृद्ध हो जाए, भले ही वह कहता है ऐसा दिखाई सुनाई पड़ता है कि अब तो हम बहुत वृद्ध हो गए अब भगवान हमको उठा लो, लेकिन जब उठाने आते हैं तो उसकी भी इच्छा नहीं होती कि अब हम जाएं, ऐसी अवस्था होती है। तो जन्म मृत्यु जरा कुछ लोग अनुभव कर रहे हैं, कुछ लोग हम जैसे लोग अनुभव करेंगे आगे जाकर जरा का, और रोग का अनुभव तो अभी भी हो रहा है, वो तो बाल्यकाल से ही प्रारंभ हो जाते हैं रोग। और जरा में तो जब बुढ़ापा आ जाता है तो दवा भी कार्य नहीं करती है अपना, बाल्यावस्था में तो चलो खून गर्म रहता है तो दवा कार्य कर जाती है तो बच्चा बच जाता है, अब वृद्धावस्था में तो ना तो मरता है ना जी ही पाता है, बस दवा में पैसे ही जाता है मनुष्यों का। सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, पैसे कमाने के लिए शरीर का नाश करता है और फिर शरीर को बचाने के लिए पैसे का नाश करना प्रारंभ करता है। यही सभी लोगों की गति है, यही दुर्दशा हो रही है। तो इसीलिए जो जरा है, तो भगवान ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग, शरीर के रोग मन के रोग सभी प्रकार के रोग, शरीर के रोगों को भी तो मन से ही ग्रहण किया जाता है, कष्ट तो मन में ही अनुभव करता है जीव। तो इसलिए इन चारों को भगवान ने बोला कि इन दुखों को अनुदर्शन करना है, बार बार सोचना है इसके विषय में, देखना है कि इसमें कितना कष्ट है, इसको दुख रूप समझना है। जो इनको दुख रूप समझेगा वो आगे बढ़ जाएगा अध्यात्म में, जो इनमें मजा लेने का प्रयास करेगा उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद ने यहाँ कहा कि आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। जब तक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं करता तो उसकी अवस्थाओं से उसको दुखों की प्राप्ति होती है, और जिसको आत्मज्ञान हो गया कि मैं कौन हूँ, मेरा किससे संबंध है, मुझे कहाँ जाना है, तो बस फिर व्यक्ति को शरीर में आने वाले दुखों को सोचता है कि कोई बात नहीं, मैंने पाप कर्म किए तो इसका फल दुख है, मैंने कुछ पुण्य किए होंगे तो इसका फल सुख प्राप्त हो रहा है, तो साम्य हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भागवत में भी व्यक्ति को, जैसा कि प्रभुपाद ने यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य को प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य का पालन और 50 साल तक होते होते घर का त्याग करने का प्रयास करना चाहिए, त्याग ही देना चाहिए, और नहीं त्यागेंगे तो फिर ओल्ड एज होम बन ही रहे हैं वृद्धों के लिए, वृद्धाश्रम, क्योंकि अब घर छोटा सा है, 4 कमरे हैं, वह आपने 4 बच्चे कर दिए, अब आप कहाँ रहेंगे, अब उसकी भी शादी कर दिए, तब रहने के लिए नई व्यवस्था चाहिए। इसीलिए वर्णाश्रम पहले के समय में घर वही रहते थे, उसी में कई पीढ़ियां चल जाती थी, क्यों, क्योंकि अब 50 साल हो गए, अपने अपने भजन करने आश्रमों में दूर जंगल में चले गए, यहाँ पर 50 भी हो गई, 60 भी हो गई, 70 भी हो गई, 100 भी हो गए, उसके बाद वहीं सड़ रहे हैं। तो इसीलिए ये व्यवस्था की गई थी वर्णाश्रम में कि व्यक्ति पहले ब्रह्मचर्य पालन करे, फिर गृहस्थ बनना हो तो बने, नहीं संन्यास ले ले, सीधे वन में जाकर भजन करे, नहीं तो बाद में वानप्रस्थ भी ले विवाह के उपरांत, और उसके बाद संन्यास तो अवश्य ही ले। ये चलता था पहले रूटीन में, तो किसी को कोई समस्या भी नहीं होती थी, अभी सभी लोग जब घर में ही रहेंगे, अन्न पर ही डिपेंड रहेंगे, तो इकोनॉमी रेट में तो समस्या आएगी ही। कुछ लोग जंगल में जाकर कुछ हवा पानी खाकर रहेंगे, तपस्या करेंगे, तो कुछ तो अन्न में भी बैलेंस बनेगा अन्न का भी। तो ये समस्या आ गई है इस समय, और इसका समाधान नहीं करते हैं। वो ओल्ड लोगों के लिए घर बना रहे हैं, अब घर में फिर और चाहिए सेवा करने वाले लोगों को नियुक्त करना पड़ता है, नौकरी में लाना पड़ता है, वो भी उनकी सेवा ठीक से नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो पैसे लिए हुए लोग हैं, पैसा लेकर कैसे व्यक्ति सेवा ठीक से कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि इसी प्रकार प्रहलाद महाराज भी कहते हैं इसको कि जरयाग्रस्त देहस्य, कहते हैं यात्य कल्पस्य विंशति, कि जैसे आधी आयु तो सोने में चली गई, अब 20 साल खेलने कूदने में चली गई, और जो 20 साल की आयु है वो जरयाग्रस्त देहस्य, वो जरा से ग्रस्त जो देह है उसमें व्यतीत हो गई। अब बचे 10 वर्ष 100 में से बता रहे हैं, बाकी जिसका 50 60 70 है उनकी तो बात ही अलग है। कहते हैं कि और बाकी काम तृष्णाओं की पूर्ति में लगा दिया, यहाँ वहाँ समाप्त, अब भजन क्या करेगा, फिर से पुनः देह प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इसको भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को जो उपदेश दिया 11वें स्कंद के 17वें अध्याय में वर्णाश्रम के क्रम में, वहाँ पर भगवान ने 51 से लेकर 57 तक श्लोकों में अंतिम श्लोक हैं, इतना अच्छा वर्णन किया गृहस्थों के लिए कि यदि जो व्यक्ति, भगवान ने इसको बिल्कुल तुच्छ करके सिद्ध कर दिया और गृहस्थों को डांटा है। कई लोग क्या करते हैं कि महापुरुषों का अनुगमन करना चाहते हैं, कई महापुरुष गृहस्थी में रहे हैं जीवन भर और अपना भजन साधन करते थे, तो सामान्य व्यक्ति भी सोचता है कि हम महापुरुष ने भी तो किया था, इन्होंने भी तो अपने माँ बाप पत्नियों के साथ रहे थे, अब हम भी रहेंगे। ये गलत बात है, ये शास्त्र विरुद्ध है, उपदेश के विरुद्ध बात है। महापुरुष कुछ भी कर सकता है, जिसको साक्षात्कार हो गया वो हजारों पत्नियों के साथ भी रहे लेकिन वो लिप्त नहीं होगा। पहले उस अवस्था में पहुंच जाए व्यक्ति, उसके बाद जो करना है उसको करे। महापुरुष जो कहते हैं वो करना चाहिए, जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भगवान सब कुछ करने में समर्थ, ऐसे महापुरुष जिनको भगवत कृपा प्राप्त है वो भी सब कुछ कर सकते हैं, तो उनकी नकल नहीं, उनके करने के अनुसार नहीं, वो जो कहते हैं जो उपदेश दिए उनका जो पालन करता है वो आगे बढ़ता है। अब कोई कहे प्रहलाद महाराज ने भी राज्य किया, भक्त थे, हम भी तो भक्त हैं तो चार माला जपते हैं, प्रभु महाराज ने भी किया, और भी तरह तरह के महापुरुषों ने किया, बहुत सारे लोग अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहे आए आजीवन वृद्ध अवस्था तक, उनको कोई फर्क नहीं, वो पहले तप करके अंतःकरण को शुद्ध करके अपने आप को श्री कृष्ण से जोड़ चुके हैं, अब उसके बाद वो लोग उनके साथ कैसे भी रहें उनको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे प्रहलाद महाराज, एक बार आप लोगों को घटना स्मरण होगी कि प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरु पुत्र के साथ में उनका बहस हो गई, उनकी बहस हो गई, ये कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं राजा का पुत्र हूँ, और गुरु पुत्र कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे गुरु जी का बेटा हूँ, अब गुरु तो एक राजा से भी श्रेष्ठ होता है, तो दोनों में विवाद हो गया। जब दोनों में विवाद हुआ तो कहता है विरोचन कि यदि मेरी बात सही निकली कि मैं श्रेष्ठ हूँ तो तुम को सूली में चढ़ना पड़ेगा, और तुम्हारी बात सही निकली कि तुम श्रेष्ठ हो तो मैं चढ़ जाऊँगा। दोनों ने ऐसा बाल्यावस्था थी ऐसा दोनों ने डिस्कस कर लिया। अब बोले कि लेकिन इसका निर्धारण कौन करेगा, निश्चय कौन करेगा कि कौन श्रेष्ठ है, तो गुरु पुत्र ने कहा कि तुम्हारे पिता प्रहलाद करेंगे। बोले नहीं नहीं वो कैसे कर सकते, वो तो मेरे पिता है, यदि उन्होंने मेरे पक्ष में ले लिया तो तुम कहोगे पक्षपाती हो गए मेरे पिता। तो बोले नहीं 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 मेरे पिताजी कहते हैं कि प्रहलाद महापुरुष है, भगवान का महान भक्त है, और वो कभी भी पक्षपात नहीं कर सकते, इसलिए कोई बात नहीं तुम अपने पिता के पास चलो। तो गए राज्यसभा में, वहाँ पर अभी प्रहलाद जी के सामने जब ये बात आई कि कौन श्रेष्ठ है, तो प्रहलाद जी ने कहा कि तो गुरुपुत्र श्रेष्ठ है क्योंकि ये गुरु का बेटा है, तुम तो एक सामान्य राजा के बेटे हो, राजा भी गुरु के आदेशों पर चलता है, तो गुरु तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए ये श्रेष्ठ हुआ। तो कंडीशन उनको बताई गई थी, तो उन्होंने क्या किया कि फिर उसी समय विरोचन को सूली में चढ़ाने की प्रबंध करने लगे, बड़े हंसते हंसते बड़े प्रसन्न चित्त से, चलो विरोचन को सूली पर चढ़ाया जाए, सभी को आदेश दिए, तैयारी वहाँ प्रारंभ हो गई, बस सूली तैयार, अब विरोचन जी जा रहे हैं। अब प्रहलाद महाराज उतने ही खुश हैं, कोई उनको मोह नहीं है अपने पुत्र से, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको तत्वों का ज्ञान है कि इससे तो मेरा वैसे भी संबंध नहीं है, ये तो लौकिक संबंध है, आज है कल छूट जाएगा। तो उन्होंने जब ऐसा कहा बड़े प्रसन्न चित्त से, और फिर तो गुरुपुत्र ने देखा कि ये तो सूली में चढ़ रहे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इनका एक ही पुत्र है, दो तीन होते तो कोई बात ही नहीं, विरोचन एक ही बेटा था। उन्होंने गुरुपुत्र गए प्रहलाद के पास, बोले अच्छा तो कौन श्रेष्ठ है, बोले आप श्रेष्ठ हैं, तो मैं आपसे बड़ा हुआ, हाँ आप बड़े हुए, तो फिर आपको मेरे आदेश का पालन करना चाहिए। तो क्या आदेश है, तो विरोचन को सूली से हटाओ, छोड़ दो उसको, चलो तो छोड़ दिया। तो प्रहलाद जितने प्रसन्नता से उसको सूली पर चढ़ाए थे उसी प्रसन्नता से ठीक है वापस कर लो, कोई मन में हर्ष नहीं हुआ, आना उनकी मृत्यु के लिए कोई उनके मन में शोक हुआ, तो उनके मनोभाव समत्व तो होता है उसमें, और हमारे में नहीं, अभी हमने उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। कई लोग चैतन्य महाप्रभु को उदाहरण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ से मिल लेते थे, शंकराचार्य जी से बहुत सारे उदाहरण। चैतन्य महाप्रभु कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उनको भक्त की दृष्टि से देखो चाहे भगवान की दृष्टि से, दोनों दृष्टि में वो माया से परे हैं। चैतन्य महाप्रभु मिल सकते हैं, आप नहीं मिल सकते। यदि किसी को साधना में आगे बढ़ना है तो पहले तो ये निश्चय करने पड़ेगा कि ये श्री कृष्ण मेरे माता पिता सब कुछ हैं, और ये केवल कहने के लिए नहीं है भगवान के पास जाने के लिए, ये मानने के लिए है, अंदर से मानेंगे तो ही तो भगवान अंदर से सुनेंगे। तो इसीलिए जितने भी वर्णाश्रम को तो केवल एक संसार चलाने के लिए बनाया है, बस लोक यात्रार्थमेव ये वर्णाश्रम किया गया है। महाभारत में है कि वर्णाश्रम जो किया है भगवान ने, व्यक्ति पशुत्व की ओर ना हो, पशु ना बने, इसके लिए एक नियम बना दिए, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, अलग अलग आश्रमों का, सबका। लेकिन उस लेवल से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, उस लेवल से आप सत्व तक आ सकते हैं बस। इसका अच्छा निरूपण भगवान ने किया है 11वें स्कंद के 25वें अध्याय में, आप लोग वहां पढ़ लीजिएगा कि किस गुण में कौन सा रहता है तो क्या लाभ क्या घाटा है। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है कि महापुरुष जो करते हैं नहीं, जो कहते हैं वो पालन जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। इसलिए कई बार ऐसा देखने में आता है तो व्यक्ति को तो इसका मतलब सोच ही रहा है यही मेरी माँ है, यही मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, तो फिर श्री कृष्ण को क्या सोच रहा है, तो संबंध का ज्ञान तो हो ही नहीं पा रहा है। तो पहले श्री कृष्ण से अनुराग हो, इसका अभ्यास हो, फिर बाद में जब वो प्राप्त हो जाएंगे तो आपकी इच्छा है तो रहो, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान ने ये बात बोला है 17वें अध्याय में 11वें स्कंद के कि जब व्यक्ति इस प्रकार से घर को अतिथि के समान मानता है, और अतिथि के समान मानते हुए ही चलना चाहिए। कहते हैं कुटुम्बेशु न प्रमाद्येत न सज्जेत कुटुम्ब्यपि विपश्चिन न स्वरम पश्चेत अदृष्टम अपि दृष्टवत। 52:11-17-52 में भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को एक संसार गृहस्थी घर में नहीं फंसना चाहिए। क्यों नहीं फंसना चाहिए, कहते हैं कि जैसे स्वर्ग लोक के जैसे संसार के ही भौतिक सुख ये भी समाप्त हो जाएंगे, उसी प्रकार से स्वर्ग आदि के लोकों के जो सुख हैं, आप सोच रहे हैं मैं इसका पालन कर रहा हूँ तो पाप नहीं लगेगा, तो कम से कम पाप से बचूंगा तो पुण्य मिलेगा, पुण्य से स्वर्ग आदि मिलेगा। तो भगवान कहते हैं अदृष्टम अपि दृष्टवत, जैसे संसार का दिखाई देने वाले विषय क्षीण होते हैं, ऐसी अदृष्ट स्वर्ग के भोग भी क्षीण हो जाएंगे। ऐसा विचार करके घर को कहते हैं कि पुत्र आप्त दार, इन सब को कहते हैं पांथ संगम, इनका जो संगम है, इसको रास्ते में मिलने वाले लोगों के समान समझना चाहिए। जैसे हम लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं तो कई यात्री मिल जाते हैं जो आपके गंतव्य स्थान तक जाते हैं, और वहाँ जाते हैं तो आपसे दोस्ती हो जाती है, तो हाँ ये अच्छा मित्र बन गया, नंबर वंबर ले लिए, सब व्हाट्सअप जो भी है सब ले करके बड़ी आसक्ति सी बन जाती है थोड़े समय के लिए। तो कहते हैं ऐसे पांथ संगम, बस मार्ग में जिस समय जाते हैं तो जितनी दोस्ती आप करते हैं भगवान कहते हैं उतना ही मानो इन सबसे, पत्नी पुत्र आदि से सबसे। और अतिथिवत वसन ग्रहे, कहते हैं अतिथि के समान घर में रहना। जैसे आप किसी घर जाते हैं तो ये सोच के नहीं जाते कि मैं मरण पर्यंत यहीं पर डेरा डाल के रहूँगा अपने संबंधी के यहाँ, यही सोचते हैं कि दो चार दिन, पाँच दिन, दस दिन, जितने दिन भी है, जितना जिससे प्रेम है उसके अनुसार आप रह करके वापस आ जाते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं अतिथिवत, एक गृहस्थ व्यक्ति को अतिथि के समान रहना चाहिए, बस ये सोचते रहना चाहिए कि अब तो कैसे चांस मिले और भगवत भजन पूर्णतया नियुक्त हो जाए। नारद जी ने इसको सातवें स्कंद के 14वें अध्याय में 6वें 7वें श्लोक में बहुत अच्छा वर्णन किया कि एक गृहस्थ व्यक्ति को आत्मज्ञान बढ़ाना चाहिए और धीरे धीरे परिवार वाले व्यक्तियों के साथ रहते हुए हाँ यस यस करना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए, बस उनको लगे कि हमारे साथ है, कहीं भाग नहीं रहा है। लेकिन जिस दिन धीरे धीरे अंदर अंतःकरण का जो ज्ञान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और बढ़ती जाए, उनको पता ना चले और आप बढ़ाते जा रहे हैं, उनको लग रहा है हाँ मेरा साथी है, मेरे साथ रहेगा जीवन लग रहा है, यस उनकी हर बात में यस यस करते जाओ। एक उपाय बताए हैं, सबके बस का बात नहीं है ये सब यस यस कर लेंगे, तो बाद में जिस दिन दृढ़ हो जाए अंदर भक्ति पक्का, उस दिन प्रणाम करके धीरे से जहाँ सत्संग साधु लोग मिले वहीं जा करके वास करें। तो इस प्रकार से भगवान ने भी कहा कि केवल अतिथि के समान पांथ संगम माने और उसको छोड़ के चला जाए। कहते हैं वो मूढ़मती है, जो आगे के श्लोकों में कहते हैं कि वो मूर्ख व्यक्ति है जो इस गृहस्थी के उसमें पड़ा रहता है जीवन भर, और क्या सोचता है, अहो में वृद्धौ पितरौ भार्या बालात्मजाह, अरे वाह, अरे देखो कैसे मैं छोड़ के भजन करूं, मेरे बेचारे वृद्ध माता पिता मुझे जन्म दिए, इनको कैसे, इन्होंने मेरे को माँ ने गर्भ में रखा, 9 महीने पाला पोसा, बड़ा किया, योग्य बनाया, अहो में पितरौ। भगवान कह रहे हैं कि गृहस्थी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अहो में पितरौ वृद्धौ, मेरे माता पिता वृद्ध हो गए और भार्या बालात्मजात्मजाह, आ जो पत्नी हैं, जो बच्चे हैं और भी नाते पोते हैं, कहते इतने सारे, कथम माम रिते जीवंती, मेरे बिना मैं चला जाऊंगा तो कैसे जिएंगे दुखिताः, ये तो बहुत दुखी हो जाएंगे। 56वें श्लोक में भगवान ने ऐसा वर्णन किया, 11, 17, 56 में कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना है। कहते हैं इस प्रकार से यदि कर्मों में ही घर में ही यदि मति किसी की हो गई तो फिर बस फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी प्रकार से इसीलिए भगवान शिव भी जब भगवान श्री विष्णु के ज्वर से शीत अस्त्र से जब भगवान शिव ने अपना ज्वरास्त्र छोड़ा था, उस समय जब उनका युद्ध हुआ तो उसके बाद भी भगवान ने कहा, शिव जी ने बड़े तत्व ज्ञान की बात बोला सभी जीवों के लिए, उन्होंने कहा कि यन माया मोहित धिया पुत्र दार ग्रहा दिशु उन्मज्जंती निमज्जंती प्रसक्ता ब्रजनारण वे। ये जो मनुष्य इतने मूर्ख हैं कि भगवान की माया से बार बार मोहित होकर के पुत्र स्त्री आदि में आसक्त होकर के वहीं पड़े रहते हैं, बार बार उसमें डूबते हैं, फिर उठते हैं, फिर डूबते हैं, बस ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी वही माँ बन गई, कभी वही बेटी बन गई, कभी वही पिता बन गया, वो तो जहाँ जिसकी आसक्ति होती रहती है वही उसको जन्म प्राप्त होते रहते हैं। कहते हैं कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, तो कहते हैं लेकिन कहते हैं कि देवदत्तम इदम लब्ध्वा निलोकम अजितेन्द्रियः यो नाद्रियेत, कहते हैं त्वत्पादौ ससोच्यो ह्यात्म वंचकः। 10वें स्कंद के 63वें अध्याय में 41, 42, 43 तीन श्लोक हैं, बहुत ही दिव्य श्लोक हैं शिव जी के द्वारा कहे गए। तो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस देह को प्राप्त करके, जो कि देवदत्तम कहते हैं, देवता माने भगवान के द्वारा दी गई, इस दिए गए देह को प्राप्त करके इसमें कृपा मानना चाहिए भगवान की, कि भगवान ने कम से कम हमको हमारे अनंत कर्मों में से हमको देह मनुष्य का दिया, और देह दिया, साधु संग भी दे दिया, और भक्ति की थोड़ी इच्छा भी है, अब बस अपनी कृपा करने की जरूरत है, आवश्यकता है, बाकी भगवान ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बढ़िया देह भी दे दिया, महापुरुषों को मिला भी दिया, प्रभुपाद सबसे मिला दिए, उनकी शिक्षाओं से मिला दिए, अब उसके बाद क्या करना है, अपने आप पर अपनी कृपा करनी है कि उसमें लगा दें, उनकी बात पूरी पूरी मान लें, तो ही काम बनेगा। तो कहते हैं कि देव दत्तम इदम लब्धवा, इस देव के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस शरीर को जो व्यक्ति कहते हैं ना द्रियेत तत्पादौ, जो आपके चरणों में नहीं लगाता है और अन्यत्र कहीं लगाता है, कहते हैं ससोच्य, वो शोक करने योग्य है वो व्यक्ति, वो सोच करने योग्य माने शोक करने योग्य है वो व्यक्ति, और आत्मवंचक, वो आत्मघाती है, आत्महत्यारा है, वो आत्म का हनन करने वाला है, आत्मवंचक, अपने आप से ही छल कर रहा है और अपने आप को बहुत चतुर समझ रहा है, वो वस्तुतः वो अपने आप से ही छल कर रहा है। कहते हैं कि यस्त्वम मर्त्या विसजेत, कहते हैं आपको आत्मानम प्रियम आत्मेश्वर प्रियम आत्मेश्वरम, कहते हैं कि जो आप सबके प्रिय हैं, और आप निकल जाए तो सब अप्रिय हो जाएगा, संसार तो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान की सत्ता से ही माया की सत्ता दिखाई पड़ सकती है, अन्यथा उसकी सत्ता ही नहीं दिखाई पड़ेगी। जैसे आंखों से आप अंधेरे को देखते हैं, तो आंखों के सूर्य जो है, आंखों के अंदर रहने वाला सूर्य कांश, उससे अंधेरे की सत्ता है सूक्ष्म रूप से, नहीं अंधेरे का क्या अस्तित्व, तो उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो माया की सत्ता दिखाई दे रही है, कहते हैं उसमें ये केवल आप हैं, इसलिए आप प्रिय हैं सबसे अधिक। और कहते हैं जो मनुष्य, जो मर्त्य आपको छोड़ करके, जो सबके प्रिय हैं, अब कोई नहीं मानता वो उसकी बात अलग है, लेकिन हैं आप ही प्रिय। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि आप ही आनंद हैं और आपको ही हर व्यक्ति चाह रहा है, वो इनडायरेक्ट वे से तो चाह ही रहा है। जैसे कोई स्त्री है, हमारी माँ खड़ी है, हम उसको कहें मेरी मम्मी, और हम ऐसा घुमा के कह दें कि ए मेरे पिता की पत्नी, तो बात तो एक ही है। तो ऐसे श्री कृष्ण, चाहे श्री कृष्ण कहो चाहे आनंद कहो, घुमा कर वही है। तो लोग चाहते तो आनंद को ही है, क्योंकि प्रिय वस्तु वस्तु कोई नहीं चाहता, चाहते उसके पीछे होने वाले सुख को, और उस सुख भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, सुख रूपो सौ। तो इसलिए भगवान सुख स्वरूप है, तो इसलिए कहते हैं शिव जी की प्रियम, कहते हैं आपको छोड़ करके, माने आप में ना ढूंढ करके आनंद को विषयों में ढूंढते हैं। तो कहते हैं कि विपर्य इंद्रियार्थार्थम विषमत्यमृतम त्यजन, वो व्यक्ति कैसा है, कहते हैं जैसे व्यक्ति के सामने अमृत है लेकिन वो उसको छोड़ता हुआ, छोड़ करके विष पान करे। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हर समय हैं, हर जगह हमारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन हम उनको छोड़ करके विषयों में भाग रहे हैं। ये रथ दिया है शरीर रूपी कि मेरी तरफ आओ, लेकिन हम इसको दूसरी तरफ दौड़ा रहे हैं, व्यर्थ पेट्रोल फूंक रहे हैं, व्यर्थ इसकी एनर्जी शक्ति को समाप्त करे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भागवत में और भी आप लोग पढ़िए, सातवें स्कंद के छठवें अध्याय को पूरे, और प्रभुपाद ने इतना अच्छा परपट लिखा है समस्त गृहस्थों के लिए, विशेष रूप से जितना प्रभुपाद को बोलना था उसमें बोले हैं छठवें अध्याय में, जरूर पढ़िए, सभी लोगों के लिए है। और ये ग्यारहवें स्कंद के सत्रहवें अध्याय के जो ये 7-8 श्लोक हैं, 52 से लेकर के 57 तक, 51 से, भगवान ने इतना भी बोला है कि शुक्ले ने चेत कहा कि शुक्ल धन से भगवान की सेवा करना है। यदि गृहस्थ है कोई और वो भगवान की सेवा करना चाहता है, तो जो शुक्ल मतलब शुद्ध ईमानदारी से जो कमाया गया धन है, उससे भगवान की, चोरी चमारी छल कपट से प्राप्त हुए धन से नहीं। क्योंकि सेवा का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति और अंतःकरण की शुद्धि, सबसे पहले श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता, और आप सोच रहे हैं कि हम चोरी के धन से थोड़ा मोड़ा करके टैक्स बचा करके और कर दें। प्रॉफिट वाले से कोई नहीं करता, वो जो टैक्स वैक्स बचाया है उससे कर देते हैं। तो छल कपट वाले धन से नहीं, भगवान ने गृहस्थों को कहा, इसीलिए भगवान ने मिनिमम वस्तु को बता दिया कि पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, कुछ नहीं है तो इतना दे दो, मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। चोरी करके ला करके सेवा करने से अंतःकरण दूषित हो सकता है। ये लोग कह देते हैं कि चोरी के धन को यूज कर लो भगवान की सेवा में तो शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका अनुमोदन नहीं कर सकते कि अब चोरी कर करके लाओ, छल कपट करके लाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। श्रवण कीर्तन स्मरण तो है करने के लिए ना, सेवा से भी वही लक्ष्य प्राप्त करना है, श्रवण कीर्तन स्मरण से। ऐसे में अराजकता फैल सकती है समाज में कि चोरी के धन से करेंगे, तो इसको बढ़ावा ना दिया जाए। तो इसलिए भगवान ने खुद बोला, और भी दसवें स्कंद के 85वें अध्याय में नारद जी ने वो वसुदेव को भी यही बात बोली कि शुक्ल धन से भगवान की आराधना करनी है, छल कपट चोरी वाले धन से नहीं, देना ही है तो सब कुछ दे करके विदा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई चोर ने चोरी से कमाया धन है, अज्ञान हो गया, तो संपूर्ण धन दे दे, साधु संतों में बांट दे, उपकार कर दे, कल्याण करके और अलग हो जाए उससे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसी में रहकर चोरी कर करके सेवा कर रहा है तो ठीक नहीं है, क्योंकि आसक्ति तो उसकी है वहाँ पर धन में, और जो बचा कुचा वो लगा दे रहा है थोड़ा कि पाप से बच जाऊँगा। यदि इतना वैराग्य है, इतना ज्ञान है, तो छोड़ करके सेवा में लग जाओ, सच्ची सेवा भगवान के। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति को भी काल कन्या के गृहस्थी है उसकी दुर्दशा हो जाती है, इसलिए काल कन्या के माध्यम से, पुरंजन के उपाख्यान के माध्यम से हम सभी को यह उपदेश दिया है कि वृद्ध अवस्था आने के पहले, और यदि आ गई है तो उसमें भी जर्जरत्व और अधिक आने से पहले सावधान होकर के भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को लगा दें, उनकी सेवा में अपने आप को लगा दें। यही इसका, इस श्लोक का संक्षिप्त में सारांश है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि गौर।